प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
कार्यक्रम परिक्रमा में अभिवादन स्वीकार कीजिए सर फिरोजी का। अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे देश दुनिया की जानकारी, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ खास है। खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। उन खास हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक में मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन।
Hello and welcome along listeners tuned to Parikrama on 100.1 FM. This is Shagun Chopra with Sir Firozi. Our program is packed with all the latest news, reports, tributes and we will be discussing and cheering for something. Now what would that be? We'll find out soon enough, so make sure to stick around till the end. Let's get started with the headlines, Sir Firozi, shall we?
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ देशों से एक दूसरे की ताकत बनने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने व्यापार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
कर्नाटका गवर्नर ग्रांट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया इन एमयूडीए साइट अलॉटमेंट स्कैम।
कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल से देशभर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित।
सुमित अंतिल एंड भागेश्वरी जाधव टू बी इंडिया फ्लैग बेयरर्स फॉर ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक्स 2024। एंड नाउ वी विल बी टेकिंग अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल इन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट Paris Paralympics contingent. Well, the countdown has begun. All eyes are still focused on Paris. And after the electrifying performances of our athletes at the 2024 Paris Olympic Games, it's now time for our Paralympic champions to shine and take over. India is sending its largest ever contingent for the Paris Paralympic Games as 84 athletes, and they will look to leave no stone unturned in their quest for glory in the French capital, Paris. Those 84 athletes will be taking part in 12 sports. Let me enlist them for you: archery, athletics, badminton, canoeing, cycling, blind judo and powerlifting, among others. The Paralympic Committee of India and the Sports Authority of India gave an incredible send-off for our Paralympic athletes who are heading to Paris. The whole scene was electric and filled with excitement. The atmosphere was charged with pride and energy. And why wouldn't that be? Right, Sir Firozi?
Ji, bilkul. Jaisa Shagun ne bataya, Paris Olympic 2024 ke baad, ab 28 August se Paris Paralympic 2024 ki shuruaat ho rahi hai. 8 September tak chalne wale in khelo ke liye shukrawar ko 84 एथलीट का भारतीय पैरालंपिक दल रवाना हुआ। इस बार भारतीय एथलीट 12 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और शगुन पिछले खेलों के मुकाबले एथलीट इस बार 3 नए खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। इनमें पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो शामिल है। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं जिन्होंने एथलीटों के साथ अपने विचार साझा किए और खिलाड़ियों को बड़े उत्साह और जश्न के साथ अपने अभियान के लिए रवाना किया गया।
Now let's talk about the flag bearing ceremony. The Indian para athletes Sumit Antil and Bhagyashree Jadhav have been named joint flag bearers for this Paris Paralympics 2024 opening ceremony, which is set to be held on August 28. The announcement was made at the send-off event for the Indian Paralympics contingent on Friday. Sumit Antil, let's talk about him now, is the reigning javelin thrower Paralympic champion in the men's F64 category from Tokyo 2020. He's also a two-time world champion and he holds the world record in the category. The 25-year-old Sumit first set the world record at the 2023 World Championships, where he won the gold medal with a 70.83 meter throw. He bettered his own record at the Asian Para Games in Hangzhou last year after achieving a mark of 73.29 meter to clinch the gold medal.
पैरालंपिक में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 54 एथलीटों ने हिस्सा लिया था और टोक्यो 2020 भारत का सबसे सफल पैरालंपिक खेल रहा। इसमें देश ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत 19 पदक जीते थे। भाग्यश्री जाधव ने एशियाई पैरा खेलों में F34 श्रेणी में महिलाओं की शॉर्ट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। उन्होंने टोक्यो 2020 में भाग लिया जहां वो 7वें स्थान पर रहने से पहले फाइनल में पहुंची थी। 39 वर्षीय भाग्यश्री ने मई में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के F34 शॉर्ट पुट में रजत पदक भी जीता था।
वेल, नो डाउट फैबुलस परफॉर्मेंस बाय आवर पैरालंपिक एथलीट्स,
बिल्कुल राइट,
and we are going to be cheering for them again. And now talking about the PCI president Devendra Jajaria, he addressed the gathering and said that this is about immense pride that we have for our athletes who have trained with unwavering dedication and passion. This is what he said as they prepare to represent India on the world's biggest stage in Paris. They embody the spirit of resilience and determination that defines our nation too. The journey to the Paralympics is a testament to their hard work, well, of course, and also expressed confidence in them. We all have the much-needed confidence in them.
जी, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 से पहले भारतीय पैरालंपिक समिति ने भारतीय दल का जोश बढ़ाने के लिए एक ऑफिशियल एंथम भी रिलीज किया है। तो शगुन, क्यों ना अपने खिलाड़ियों और देशभर का जोश बढ़ाने के लिए हम भी इस गाने को प्ले करें।
वेल, ऑफ कोर्स।
चांद लगा दे हर चीज तुझे देखे ऊपर तू झुका दे ऊंचा है और ऊंचा हो अपना ये तिरंगा
Well, they have all our best wishes with them, and with such a strong backing and a memorable send-off, they are definitely set to make a mark in Paris. We have all our hopes with them. It's clear that the whole nation is cheering for them and will keep on cheering.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या खास जानकारी है।
Well, first, let's take you to Kerala. In Kerala, it is Chingam First today, the first day of Malayalam calendar, and it is a time for new beginnings, fresh starts and joyous celebrations steeped in tradition and culture. We have more on this in a report.
Chingam First is the first day of Chingam month, the first month of Malayalam calendar. It signifies the start of Malayalam New Year and is celebrated with much enthusiasm and traditional practices. As it marks the harvest season, people embrace the day by dressing in traditional attire, with men and women wearing mundus, shirt and set saris. Many also visit temples to begin the year with blessings. With the birth of Chingam today, the Malayalam calendar year known as Kollavarsham is also entering a new century. 1199th year bid farewell with Karkadagam 32nd. With Chingam First, Kerala's unique year of Kollavarsham 1200 begins today. Chingam First represent a fresh start, and many Keralites view it as an auspicious time to initiate new ventures, projects or even personal milestones like marriages or housewarming ceremonies. Chingam First also marks the harvest season, symbolizing abundance, prosperity and gratitude for nature's blessings. Kerala celebrates Chingam First as Farmers Day. This day is dedicated to pay respect to the farmers and to celebrate their hard work and service. Chingam First also sets the stage for Onam, Kerala's biggest and most widely celebrated festival, which occurs in the same month. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में अंडमान निकोबार प्रशासन द्वीपों के चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि द्वीपों में कई अहम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
उपराज्यपाल ने कहा कि मुख्य भूमि से दूरी और लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद द्वीप विकास प्राधिकरण की 44 में से 15 परियोजनाएं संचालित हो चुकी हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप में लगभग 92,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली दूरदर्शी परियोजनाएं द्वीपों को आर्थिक हब बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
मुख्य भूमि से दूरी और लॉजिस्टिकल चुनौतियों के होते हुए भी आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 44 में से 15 यानी कि 34% परियोजनाएं पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो चुकी हैं। चेन्नई टू अंडमान सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना, हम्फ्री स्ट्रेट पर आजाद हिंद फौज हेतु इत्यादि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स द्वीपों के बहुमुखी विकास में गेम चेंजर सिद्ध हुए हैं, जिनसे ईज ऑफ लिविंग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 29 परियोजनाएं यानी कि 66% ऐसी हैं जो समापन की ओर बढ़ते हुए द्वीपों की प्रगति को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी।
एडमिरल डी के जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले 6 महीनों के दौरान द्वीपों के लगभग 13,000 लाभार्थियों को 6 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। परिक्रमा के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल।
नाउ लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। This festival is also called the Festival of Festivals. This is a celebration of the festivals of the tribes of Nagaland. It is celebrated annually from 1st to 10th December. Kisama Heritage Village houses all the tribes as per their location on the map of the state to enable the visitors to witness the house designs, attires and culinary of each tribe in one place. Kisama Heritage Village is located 14.5 kilometers away from the capital city, Kohima. Here's a report.
Hornbill Festival is part of the celebration of Nagaland Statehood Day to give colour and joy to the creation of the state on one hand, while on the other to acknowledge the vibrancy of the tribes of the state in its expression of oneness, with the aim to attract tourists, both foreign and domestic. Hornbill Festival is visited by thousands, both foreign and domestic tourists. To enhance tourism, the state government in its effort continues to bring in various amenities to attract tourists. This year's Hornbill Festival is special as it will be celebrating its 25th year of its inception. A major facelift is being given at a venue to accommodate more visitors. Besides furnishing of various visitor amenities, a 7,000 capacity gallery is under construction for holding the cultural functions. For Parikrama, this is Jonas Yantan from Akashvani Kohima.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we will give you a brief about Madan Lal Dhingra. This day is the death anniversary of Madan Lal Dhingra.
The wave of independence movement had started initially as a protest against the partition of Bengal, and it gradually grew into a demand for complete freedom. Indians realized the fact that a group of foreigners who came to our shores as traders had cleverly divided the people and started ruling them. The wealth of this vast land was systematically looted by them. The very same people who depended on us for their trade started crushing our cottage and village industries, treating the people of the soil as slaves. This naturally needed an equal and proportionate reply. The people revolted against the oppressors, and the country began witnessing sporadic protests. Cruel treatment to the freedom fighters, legendary heroes by the British, agitated youth, and one of such young freedom activists was Madan Lal Dhingra.
Madan Lal Dhingra was born on 18th of September 1883 in Amritsar, Punjab. He went to Lahore in 1900 to study at the Government College University. There he was influenced by the nationalist movement, which at that time was about seeking home rule. Dhingra was specially troubled by the poverty of India. He studied the literature concerning the causes of Indian poverty and felt that the solution to these problems lay in Swaraj and Swadeshi. In 1904, Dhingra led a student protest against the principal's order to have the college blazer made of cloth imported from Britain. He was expelled from the college for this. In general, the incidence of revolutionary nationalism was on the rise during those days. This incident brought Dhingra closer to the revolutionary nationalism.
In 1905, Dhingra went to London and stayed in India House. India House was a student residence located in North London. With the patronage of lawyer Shyamji Krishna Varma, it was open to promote nationalist views among Indian students in Britain. It was in India House that Madanlal Dhingra met V.D. Savarkar, who was then the manager of India House.
Meanwhile, on 8th of June 1909, Baba Rao Ganesh Savarkar, elder brother of Veer Savarkar, was sentenced to transportation for life. This deportation of Baba Rao Savarkar enraged the revolutionaries in London. William Hutkarzan Wiley was the head of the secret police then and had been trying to obtain information about Savarkar and other revolutionaries. It was because of Curzon Wiley that the revolutionary freedom fighters in London were being targeted. The Journal of Shyamji Krishnavarma, named the Indian Sociologist, described Wiley as old repentant foe of India who has fattened on the misery of the Indian peasant ever since they began their career. The resentment was such among the revolutionaries that somehow forced Dhingra to take an extreme step.
On 1st July 1909, Dhingra attended a gathering hosted by the National Indian Association at the Imperial Institute. William Hurt Curzon Wiley, the British officer, was also present in the meeting. At the end of the event, as the guests were leaving, Dhingra shot Curzon Wiley at point-blank range.
Dhingra was immediately arrested. At his trial, he represented himself, though he did not recognize the legitimacy of the court. He claimed that the gunning down of Curzon Wiley was a patriotic act and in retaliation for the inhuman killings of Indians by the British government in India. He was found guilty and sentenced to death. He was executed at Pentonville Prison on 17th of August 1909.
Young Madanlal Dhingra had a comfortable and promising start to life. His English education assured him that, but that wasn't to be. He preferred to avenge injustice done to his countrymen. He knew it very well that avenging would entail untold misery for him, yet he took the plunge. Such was the determination of young Dhingra, and this and many more such sacrifices paved the way for a freedom that was to come many decades later.
And what a coincidence it was that in 1947, the withdrawal of British forces started from 17th of August. On 17th of August, the first major unit made its exit from the former colony. A large contingent of the Royal Air Force sailed from Bombay to, as it was then known, back Great Britain. Of course, the total withdrawal of all British troops took time. It wasn't until February 1948 that the final departures took place.
British withdrawal signaled the end of the colonial Indian Army. Historians are predominantly in agreement that Lord Mountbatten's haste in withdrawing the British forces from India and essentially split the country. We'll bring you more tomorrow.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और लेते हैं वहां की हलचल।
एस लेफ्ट रेसलर विनेश फोगाट अराइव्ड एट दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिस मॉर्निंग फॉलोइंग हर हार्ट ब्रेकिंग डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम पेरिस ओलंपिक्स 50 kg गोल्ड मेडल मैच। शी वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर बींग 100 grams ओवरवेट बिफोर द वुमेन्स 50 kg फाइनल बाउट। Vinesh had to stay back in Paris as she had appealed to the Court of Arbitration for Sport, which is CAS, for a joint silver medal. Her appeal was eventually dismissed. Upon her arrival in New Delhi, Vinesh received a grand welcome from the fans who had gathered at the airport hours before her arrival, and this was expected. Vinesh's family members and relatives were also present outside the airport to welcome her.
अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं पंडित जसराज को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात गायक थे। इनका संबंध मेवाती घराने से था। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें साल 2000 में पद्म विभूषण, साल 1990 में पद्म भूषण और उससे पहले साल 1975 में पद्मश्री जैसे सम्मानों से नवाजा गया था।
वेल, हिज लेगेसी इंक्लूड्स मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज ऑफ क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक, क्लासिकल एंड डिवोशनल म्यूजिक, एल्बम्स एंड फिल्म साउंड ट्रैक्स, इनोवेशंस इन वेरियस जॉनर्स इंक्लूडिंग हवेली संगीत एंड पॉपुलराइजिंग द मेवाती घराना। एंड लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू दिस मेसमराइजिंग लाइव परफॉर्मेंस बाय हिम।
Pavana chalata madasmanda sugandha Pavana chalata madamanda sugandha nagana gara
Today, it's also the birth anniversary of Ted Hughes, English poet, translator and children's writer. Hughes wrote many books for children, notably The Iron Man, which was also published as The Iron Giant and Remains of Elmet. He published prolifically with volumes of poetry such as Woodrow, Crow, Wolf Watching and Birthday Letters, to name a few.
आज निशिकांत कामत की भी पुण्यतिथि है. ये हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता थे. इन्होंने दृश्यम, मुंबई मेरी जान और मदारी जैसी शानदार फिल्मों का निर्देशन किया था. इनकी पहली फिल्म डोंबिवली फास्ट ने मराठी सिनेमा में खूब प्रसिद्धि पाई. निशिकांत कामत ने तमिल में आर माधवन के साथ अपनी फिल्म का रीमेक इवानो उर्वन बनाया. इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म मराठी का नेशनल अवार्ड मिला था. प्रस्तुत है उनकी फिल्म मुंबई मेरी जान का ये डायलॉग.
मुंबई के बच्चे तो मानेंगे भी नहीं कि मुंबई एक साफ और शांत जगह होता था. कोई टेंशन नहीं. मैं मेरा बीवी के साथ में एयरपोर्ट पे जाता था बिंदास घूमने को, और इतना नजदीक से प्लेन को देखा है. ओ, इतना नजदीक से. कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई डर नहीं. ये हिंदू मुसलमान दंगा राज. दिवाली में बच्चे फोड़ते थे पटाखों. ये पटाखों के बम का नाम एटम बम किसने रखा? ये अपना मुंबई क्या था पता है? जमीन के साथ.
Today, it's also the birthday of Y. Venugopal Reddy, former Reserve Bank of India governor and also the chairman of the 14th Finance Commission of India from 1st Feb 2013 to 31st December 2014, a constitutional body with the rank of Union Cabinet Minister. During 2008-13, he has been active in academic arena and was associated with University of Hyderabad, Indian Institute of Technology Madras and Columbia University, New York. Prior to being appointed as governor, he had served as executive director, International Monetary Fund, as secretary, Government of India, and principal secretary, Government of Andhra Pradesh. He served as a member of the United Nations Commission of Experts on Reforms of the International Monetary and Financial System. He was also on the advisory board of Institute for New Economic Thinking.
आज फादर कामिल बुल्के की पुण्यतिथि है. ये बेल्जियम से भारत आकर बसे साहित्यकार थे. इन्हें हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. इनकी मुख्य रचनाओं में रामकथा, उत्पत्ति और विकास, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, मुक्तिदाता, नया विधान, हिंदी अंग्रेजी लघुकोश और बाइबल हिंदी अनुवाद आदि शामिल हैं. आज ही पुण्यतिथि है पुलिन बिहारी दास की भी. ये स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे. इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया. कलकत्ता विश्वविद्यालय इनके सम्मान में एक विशेष पदक देता है जिसका नाम पुलिन बिहारी दास स्मृति पदक है.
Today, we are also remembering American R&B and soul singer Johnny Sales. In the year 1959, he formed the Johnny Sales Band, who played at Chuck Berry's Paradise Club. His first records for the label, Don't Turn Your Back on Me, You Told a Lie, followed by You Did Me Wrong, Got You on My Mind, appealed to both blues and deep soul fans. And now, for letting the music speak, let us listen to this song, I Can't Get Enough by him.
Baby, they're made for kissing me. Yes, they are. In your arms, baby, they're made for holding me so tight. But just as long as I'm close to you, I know that everything will be alright. 'Cause I can never, never, ah!
मच।
आज हिंदी सिनेमा में खलनायक की भूमिका से दमदार छवि बनाने वाले अभिनेता शरद सक्सेना का जन्मदिन है। अभिनेता शरद सक्सेना ने अपने 50 साल के लंबे करियर में लगभग 250 फिल्मों में काम किया है। अभिनेता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत निर्देशक नरेंद्र बेदी की फिल्म बेनाम से साल 1974 में की थी। इन्हें फिल्म गुलाम के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन अवार्ड कैटेगरी में नामांकन मिला। इन्होंने खलनायक की भूमिका के अलावा कई हास्य फिल्मों में भी दमदार भूमिका निभाई और पेश है उनकी एक हास्य फिल्म का ये डायलॉग।
अरे वाह केजी, करोड़ों में होटल बेचा, पूरी दुनिया को मिठाई खिलाई और उसके बाद ब्राउन की याद आई।
मिठाई खाएगी साहब, इनका होटल बिका नहीं है, लूट चुका है।
लूट गया?
हाँ।
किसने लूटा?
अरे
और तुम कौन हो?
तुलसी।
टुडे इट्स द बर्थडे ऑफ सचिन पिलगुंकर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड सिंगर ऑफ मराठी एंड हिंदी फिल्म्स। He has appeared in films such as Majha Mark Ekla. This was his first childhood film as a child artist. And he has also been part of highly successful films like Geet Gaata Chal, Balika Badhu, Akhiyon Ke Jharoko Se and Nadiya Ke Paar. He has also directed several hit Marathi films starting with My Baap, Navri Mile Navralia, Aashi Hi Banwa Banvi. And for you listeners, we have this song Geet Gaata Chal, which has been
picturized. चल ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल
आज अमृत लाल नागर की जयंती है। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने कई नाटक, रेडियो नाटक, निबंध, संस्मरण, अनुवाद और बाल साहित्य की रचना की। इन्हें साहित्य जगत में उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई। ये दिसंबर 1953 से 1956 तक आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद कुछ समय तक इन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य किया। नागर को उनकी रचना अमृत और विश्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्यिक सेवाओं के लिए युगांतर पुरस्कार प्रदान किया गया। आकाशवाणी के खजाने से पेश है उनके रेडियो नाटक का ये अंश।
चिट्ठी ले जाइए।
हाँ लाओ चिट्ठी।
अरे भाई ऐसे नहीं मिलेगी, पहले दस्तखत करवा लाओ। एक्सप्रेस लेटर है।
दस्तक?
हाँ।
इतनी बेरिया हमरे यहाँ को दस्तखत नहीं कर सकत हैगा। हाँ बिटिया तो कॉलेज पढ़न गई है।
अरे मारी चिट्ठी नहीं लाई।
वो दस्तक करावेगा बहू जी, हम पड़ोस है कामे भैया का बुला लाए थे।
ये तो अंधेर कर रहे हो डाकिया बेटा, भला चिट्ठी का दस्तक आज तक तो करावा नहीं गवा। अरे ये भी कोई तार हैगा?
अरे माताजी एक्सप्रेस लेटर है, जरूरी चिट्ठी है, जरूरी।
हाय राम, जरूरी चिट्ठी कहाँ से आ गई? हे भगवान ईश्वरनाथ।
आज हिंदी भाषा की जानी मानी कवियत्री अनामिका की का जन्मदिन है। ये आधुनिक समय में हिंदी भाषा की प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार भी हैं। इनके कविता संग्रह में गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टूप, समय के शहर में आदि शामिल हैं। प्रति नायक नाम का इनका एक कहानी संग्रह भी है और इन्होंने अवतार कथा पर कौन सुनेगा, दस द्वारे का पिंजरा जैसे उपन्यासों की भी रचना की है।
Today is also the birthday of Robert De Niro, actor and film producer. He's known for his film roles in Bang the Drum Slowly, The King of Comedy, Once Upon a Time in America, Brazil, The Mission, and many more. And also, he was Oscar-nominated for his performances in Taxi Driver, The Deer Hunter, Awakenings, Cape Fear, Silver Linings Playbook, and Killers of the Flower Moon.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।